राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम।
प्रपन्न पर जाता ज्ञान मुद्रा कृष्णा वसुदेव सुतम देव कंस जानुमर्दमन देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितिवरान नवनीत जाभा पूरेन्द्र सुंदर श्रीमद् भगवद गीता में आया है स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है, ठीक अपनी मर्यादा में चले। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुरुष स्त्री ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी अपने अपनी मर्यादा में जिस शास्त्र ने आज्ञा दी है उसी आज्ञा के अनुसार चले तो परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए। यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदं तत्व स्वकर्मणात्मभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। मनुष्य मात्र भगवान का पूजन करके और परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा? अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके। जैसे अभी स्त्रियों की बात बताई तो भी अपने कर्तव्य का पालन करे और कर्तव्य के अनुसार अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे तो उसे परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और उसमें पूजन भगवान का करे, सब में पूजन भगवान का है। माता पिता में भी भगवान का पूजन, पति में भी भगवान का पूजन, नौकर के लिए मालिक में भी भगवान का पूजन, शिष्य के भी शिष्य के लिए गुरु में भगवान का पूजन। सब जो हमारे प्रभु परमात्मा है ऐसा समझकर उसका काम किया जो सिद्धि हो जाती है। जैसे स्त्रियों के लिए पतिव्रत की बात बताई ऐसे पद्म पुराण में बात आई है पत्नी तीर्थ है। पत्नी का आदर पूर्वक सम्मान किया जाए तो वो भी एक तीर्थ है। माता तीर्थ है, पिता तीर्थ है, गुरु तीर्थ है, पति तीर्थ है, पर पत्नी कम नहीं है। उसको तीर्थ रूप बताया है। उसका उसी कथा ऐसी है। नरोत्तम एक ब्राह्मण थे, उत्तम उसकी स्त्री थी सुशीला। तो वो अपने धर्म पर खूब कायम रहती थी, बहुत ही सुंदर थी। स्त्रियों में बहुत बड़ी सुंदर, देवलोक के राजा इंद्र भी उसको चाहते थे। मानो देवताओं में अप्सराओं में भी रूप नहीं जैसा उसका रूप था, जैसा रूप था वैसे ही उसमें गुण थे। देखो सुंदरता है वो ऊपर से रूप की होती है, सजावट से ज्ञान और कपड़ों से सुंदरता होती है, पर ये सुंदरता भवका है, बढ़िया नहीं है। आचरण और चरित्र से जो सुंदरता होती है वो सुंदरता सबसे श्रेष्ठ होती है। यहाँ शरीर नष्ट भी हो जाए तो वो सुंदरता उसके साथ चलती है। जिसके आत्म अच्छे हैं, जिसके भाव अच्छे हैं, जिसका सिद्धांत अच्छा है, जिसका ऊंचा भाव है, परमात्मा की भक्ति है, अपने धर्म का पालन है, उस पर दृढ़ता है, ये बड़ा ऊंचा श्रृंगार है, बहुत बढ़िया चीज है। ये भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान और चीजों नहीं लेकिन अपना प्रेम होता है, उस प्रेम को भगवान भी प्राप्त करते हैं। प्रेम के भुखारी है, भिखारी है, भिखारी भूखे है, तो वो प्रेम प्राप्त होता है भगवत कृपा से। इसके लिए कई लोग तपस्या करते हैं और इतिहास में भी आता है कि तपस्या करी, उसने तपस्या करी, पर प्रेम होता है अपनापन से। ये एक बड़ी रहस्य की गुप्त बात है, हमारे वही संतों से मिली है ये बात, निरल नहीं, अपनापन होता है, उससे प्रेम होता है। तो अपनापन ठाकुर जी में होना चाहिए, ये व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, द्रव्य में, ये नहीं, ये आकर्षण बढ़िया नहीं है। जो नित्य है परमात्मा, अगर उसी का अंश है ये परमात्मा का अंश, चेतन चलता है। महाराष्ट्र में पंढरीनाथ है, पंढरी वे पंढरीनाथ महाराज कैसे पधारे हैं? एक पुंडरीक था, वो माँ बाप की सेवा करता था। पहले नहीं से सेवा, तीर्थ यात्रा में गया तो तीर्थ यात्रा में एक सज्जन को देखा, वो माँ बाप की सेवा कर रहे, केवल माँ बाप की सेवा। उस सेवा से इतना वो सिद्ध हो गया, जो माँ बाप की सेवा कर रहे थे हम, और परवाह ही नहीं किसी बात की, भगवान आ गए और पीछे खड़े रहे थे पंडरीक, मैं आ गया हूँ साक्षात भगवान विष्णु तेरे को दर्शन देने के लिए। तो उसने कहा कि महाराज अभी मेरे को वक्त नहीं है, अभी मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, तो उस समय नहीं है कि मेरा दर्शन करने के लिए भी समय नहीं तेरे को। तो महाराज मैंने बुलाया नहीं, क्यों आए हो आप? कि तेरे माँ बाप की सेवा को देखकर मैं खुश हो गया, अब जिस सेवा से आप बिना बुलाए आए वो सेवा मैं कैसे छोड़ दूं? तो एक ईंट पड़ी थी, उस ईंट को फेंक दिया, उस ईंट पर खड़े रह गए भगवान, वही विट्ठल भगवान है, तो विट्ठल नाम उसका, ईंट का है, उस रूप पर खड़े हुए विट्ठल भगवान इस रूप से प्रकट हो गए, चंद्र भगा किनारे पूजित हुए। भगत की ऐसी विलक्षणता है, और भगत में भी बात बताई कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने कर्तव्य कर्म में ठीक तरह से अभिरत रहता है तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पतिव्रताओं की बातें कई आती है ऐसी, सूर्य को बंद कर दिया महाराज, सूर्य उदय नहीं बन दिया, इतनी विलक्षण शक्ति इन बहनों में है। बहनों में क्या भाइयों में, जो अपना व्रत पालन करे उसमें आ जाएगी, साधु हो, गृहस्थी हो, बहन हो, भाई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्य कोई क्यों ना, जो अपने ठीक धर्म का पालन करेगा वो ऊंचा हो जाएगा। लोगों में बैन पड़ा हुआ है कि पुरुष जाति को जो अधिकार है वो स्त्री जाति को अधिकार नहीं दिया, ठीक नहीं किया है, ब्राह्मणों को अधिकार दिया, मुसलमानों को नहीं दिया, ये ठीक नहीं किया है। ये शास्त्र के तत्व को न जानने वालों की बातें बहुत मूर्खता की। अपनी जगह ठीक तरह से हो जाए, जैसे एक चमार है अपने धर्म में ठीक है, एक ब्राह्मण है अपने धर्म का पालन नहीं करता है, तो यहाँ तो वर्ण से तो ब्राह्मण माना ही जाएगा, परंतु भगवान के दरबार में आदर्श चमार का अधिक होगा जो अपने धर्म का ठीक पालन करता है। ऊंचा वास्तव में वही है जो अपनी मर्यादा पर ठीक है, मर्यादा का पालन करता है, वो वास्तव ऊंचा है। अभी दिखने में चाहे छोटा दिखे, छोटा है नहीं। वो आज अभिमान के कारण से लोग चाहते हैं हम छोटे क्यों हो जाए। आजकल के लड़का लड़कियों में एक विलक्षण बात हमने देखी, आश्चर्य आया हमारे। अब तो आश्चर्य नहीं है कि वो देखते हैं श्रीवाज। एक लड़की थी मेरे परिचय में थी, तो उसका ब्याह हो गया। उसके बाद मैंने कहा भाई पति को हो जाना प्रणाम करना। कि प्रणाम कैसे करे, हमारा उनका दर्जा एक है, प्रणाम हम क्यों करें। ये उसने जवाब दिया, तब मेरे को पता लगा ये अभिमान, ये अभिमान कोरा भरा हुआ है। ये हमें पता नहीं था, पहले जानता नहीं था मैं, उसने साफ कहा। तो अब आजकल अभिमान ही भरा जाता है, वो उसी मंडली में होगा। जैसे चोरों में चोरों का सरदार है सब, तो सरदार तो चोरों का ही होगा, सबका नाम सही होगा। ऐसे उस मंडली में बसे वो अपने को बड़ा मान ले, परंतु भाइयों बहनों बड़ा वो नहीं है। बड़ा जो अपना ठीक कर्तव्य का पालन करे, अपनी मर्यादा में रहे, कभी ना चूके, ऐसा रहता है, वो बड़ा होता है। भाई हो बहन हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में रहता हो, परंतु वो श्रेष्ठ है। वो चूकता नहीं है, वो भूलता नहीं है, वो विचलित होता नहीं है, ठीक ढंग से विरत क्यों हुए वो अच्छी तरह से। ऐसे अपने अपने काम ठीक होता है। एक नरोत्तम ब्राह्मण की कथा आती है। नरोत्तम ब्राह्मण है, वो गया तीर्थों में, तो तीर्थों में जाने वाले की ऐसी बात आई है पुस्तकों में कि वो सब चीज वस्तु साथ में नहीं रह गई, केवल ओढ़ने पड़ने का कपड़ा, दो धोती और साधारण बहुत सामान और पैदल तीर्थ से घूमना। ऐसे तीर्थों में गया, बड़ा नियम पालन करता, उसके पास वस्तु में नहीं, दो धोती है बस। तो स्नान करता है तो धोती वो धो करके धो लेता है, एक धोती पहन लेता है, उसको सुखा देता है। तो धोती सुखा तो वैसे सुखाया, तो धोती ही बिना रस्सी और लकड़ी के आधार के ऊपर ठहर गई ऐसे आकाश में। आकाश में धोती सूखने लगी और फिर क्या कि वो चले तो साथ साथ चले, जहां तीर्थ में जाकर स्नान करे वहां उस धोती को ले ले, पहन ले, धोती सुखा दे, फैला दे आकाश में। तो उसने एक दिन देखा ऐसे ऊंचा और कहा, मैंने समझा कि देखो हमारी कितनी तपस्या है, जैसे धोती आकाश में बिना आधार के सूखती है। उसमें एक बगुली उड़ती जा रही थी, उसने बीच कर दी, वो उसके मुख पर पड़ गई, तो उसने मेरे पर बीच कर दी, वो बेचारी मर करके गिर गई, गुस्से से मर गई। वो मर गिरी, धोती गिर गई, अब धोती आकाश में नहीं, वो भी नीचे गिर गई। आकाशवाणी हुई रहे नरोत्तम, तू समझता है कि मैं तपस्या करता हूँ, एक मूख सन्नाल है, मैं चले हूँ, मूख नाम है उसका, उसकी तपस्या के सामने तेरी तपस्या कुछ नहीं है, तेरा त्याग कुछ नहीं है। धर्म का तत्व वो जानता है, तेरे सीखना हो तो वहां जा, वहां सीख रहे, तू तत्व नहीं जानता है, कोरा तप करके अभिमान कर रहा है। आकाशवाणी से सुना तो वो गया, ढूंढते ढूंढते गया, एक स्थान पर वो कहा भी ये मूख चांडाल का घर है, यहाँ रहता है। भीतर गया, जाते ही देखा, देखते ही वो महाराज पधारे, पधारिए महाराज, आप धर्म का तत्व तो जानने के लिए आए हैं। कि हाँ, तो महाराज में थोड़ी सी अभी समय नहीं है, थोड़ा ठहरो, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा करता था माता पिता की, उसने ब्याह नहीं किया, कि ब्याह करूंगा तो माता पिता की सेवा में बाधा आ जाएगी, तो सेवा में ही रहता एकदम। माता पिता सोए हैं पास में, नीचे पड़ा रहता है, जब रात्रि में कोई काम पड़े थोड़ा उससे टूट कर सेवा में लग जाता। गर्मी के दिनों में खूब उसने ठंडा मकान रखता, अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें गर्मी लायक ऐसा भोजन कराता, और अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ खर्च करके शरीर से भी खटता परिश्रम कर वस्तुओं की सेवा करता। सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े आदि रखता, गर्म मकान रखता और गर्म पानी से स्नान कराता, सब तरह से माँ बाप की सेवा करता था। माँ बाप की सेवा करने से उनमें एक विलक्षणता आ गई, जैसे नरोत्तम में आकाश में ज्योति सूखने की बात आई, ऐसे उसे विलक्षणता आ गई। तो नरोत्तम ने देखा तो देखा तो उसे मकान छात बड़े बड़े वो भी आकाश में ठहरा हुआ, बिना थम्बे और दीवाल के आकाश में ठहरा हुआ मकान। उसने विचार किया तेरी एक मामूली धोती सूख थी, जैसे तू विचार करता है इसका तो मकान का मकान ही आकाश में खड़ा है। कहा महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जो कहोगे कहूंगा। अरे तू मेरे को जानता नहीं, कौन हूं मैं? क्या महाराज इसी अभिमान से तो धोती गिर गई और बगली मर गई वो आपके ऊपर। कैसे जानता है वो, तो बहुत दूर तीर्थों की बात है, कैसे जानता है? धर्म का तत्व जानो महाराज। देखो मेरे को तो समझ नहीं है भाई, आप हट जाओ, सुभा नाम करके एक पतिव्रता है वहां पर आप चले जाओ, वो धर्म का तत्व जानती है, वो आपको धर्म का तत्व बताएगी। ये कैसे हमारा एक हाल है। तो वो जो मकान खड़ा था ऐसे, उसके नीचे एक ब्राह्मण खड़े थे। वो ब्राह्मण आए, कचरो ब्राह्मण देवता मैं बता दूं आपको, वो सुभा नाम पतिव्रता का घर मैं जानता हूं। साथ में हुआ तो वो बोला ब्राह्मण, ऐसे तू चंडाल के घर पर रहते हो, ब्राह्मण होकर यहाँ करे हो? कहते आपकी अभी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, निर्मल नहीं हुई, इस वास्ते मेरे को आप पहचान नहीं सकते। चलो आपको बता देता हूँ। कहते क्या बात है, इस चंडाल में इतनी विलक्षणता कहाँ से आ गई? मेरी बात भी जान ली हो, बुगली गिर गई, वो धरती धोती गिर गई, उस बात को जानता है, और आकाशवाणी ने जिसकी प्रशंसा करी, ऐसे धर्म को तो क्या है इसके पास कि महाराज इसे माँ बाप की सेवा है, माता पिता की सेवा, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य ऐसे परिषदों में आता है दीक्षांत भाषण में, वो बात करिए। इसमें रात और दिन इस सेवा में लगा है और कुछ नहीं काम किया, व्यात में नहीं किया कि माँ बाप की सेवा में कोई बाधा न आ जाए, इस बात ये माँ बाप की सेवा में लगा हुआ है। उस सेवा के प्रभाव से सब कुछ जानता है। और अब ये महाराज ये देखो ये सुबह का घर आ गए महाराज, ऐसा बताते ही वो ब्राह्मण तो अंतर्धान हो गया। सुबह के घर पहुंचे, जो दरवाजे में गए थे वहां आओ ना महाराज, बड़ी कृपा गई, पधारो पधारो ब्राह्मण देव था। इसने उसके पति आ गए, पति आ गए तो सामने जाकर उनको जाई, जब आकर घर में चरण धोए आसन बिछाया, वो मेरे तुम बोला कि देख तू मेरे को देखती नहीं है, मैं तेरे यहाँ पर खड़ा हूँ, वो तो खड़ा हूँ ऐसे ही महाराज ठहरो, और तुम उसमें लग गई। उसने कहा कि महाराज आप तेज क्यों होते हो, ये बगली नहीं है जो भस्म हो जाए, कोई नहीं उसने वो क्यों तकते देखते हो, अभी मेरे उस समय नहीं है, हमारे पतिदेव आए हैं, इनकी मैं सेवा करूंगी, इसके बाद आपकी सेवा में जो मेरे को आएगा बता दूंगी, अभी टाइम नहीं है। कहते मैं एक ब्राह्मण हूँ, तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ और तेरे को समय नहीं है। कहा महाराज मैं ये समय कर रही, मैं सेवा कर रही हूँ, बस समय कहा मेरे पास में, समय हो तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, आप जो पूछोगे बताऊंगी, और नहीं तो जल्दी है आपको तो आइए। याद रखते हैं एक दुकानदार है, उसी यहां चले जाओ, वो धर्म का तत्व जानता है और आपको बता देगा। उसमें भी वो ब्राह्मण खड़ा सामने, उस सुबह के घर में भी वो ब्राह्मण खड़ा है जो साथ में आया था, वो आया कि महाराज मैं बताऊं उसका जो तुलाधर है वो ब्रिज उसके घर में जानता हूँ, आपको बताऊं चलो। जैसे पंडा तीर्थ में साथ में होकर दर्शन कराता है ऐसे साथ में गया। कहते ये क्या बात है, ये ऐसी घर में रहने वाली जो बाहर निकलती नहीं, हमारे तीर्थों में बड़ी हुई घटना को कैसे जानती है ये। कहते महाराज ये पतिव्रता है, केवल पति की सेवा में ही तत्पर है, उसी सेवा से सब जानती है, भूत भविष्य वर्तमान को जानती है और भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार तत्व को जानती है, धर्म के तत्व को जानती है। ये पढ़ने से सीखने से वो बात नहीं आती है, वो अपने धर्म का कर्तव्य का ठीक पालन करने से बिना पढ़े उसके अंतःकरण में पाते आ जाती है भीतर में, क्योंकि सच्ची लगन है, सच्चा काम करता है तो सच्चे में सब साथ में आ जाते हैं, वो सब उनको जानती है अच्छी तरह से, केवल पतिव्रत धर्म के कारण से ये जानती है। और तुलाधर है वो क्या कि तुलाधर महाराज वो भी बड़ा अच्छा है, देखो ये तुलाधर की दुकान, वो देखो दुकान खड़ी, आदमी बहुत से खड़े हैं, वो बढ़िया अपना बिक्री कर रहा है, जहां बताया उसको बताते बस उस अंतर ध्यान हो गए, देखा सामने बस वहां गए, उसे देखा कि महाराज एक हो दोया हो तीन हो चार हो चार हो कैसे अनाज बेच रहा है, तेल बेच रहा है, घी बेच रहा है, नमक बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, गुड़ बेच रहा है, शरीर में हाथ लग जाने से कपड़े हैं वो मैले हो रहे हैं तेल घी लगने से, ऐसा वो देखा ब्राह्मण ने देखा भूल हो गई यार, ये क्या बताएगा, ये एक हो से दो या वो कर रहा हो कि मेरे को क्या धर्म बताएगा, ये तो बढ़िया है हर चलाता है अपनी। कोई कहता महाराज दोना का अपने नमक दीजिए, चारा लगे मिर्ची दीजिए, महाराज रुपये के अनाज दीजिए, इस चीज ऐसे मांग रहे हैं, वो कहते ठहरो ऐसे दे रहा है धना धन धान ऐसी तरह से, तो नरोत्तम देख करके और जाने लगा तो वहां भी वो ब्राह्मण खड़ा जो वहां खड़ा था पता गए वही भीतर में खड़ा है, वो आया क्यों, उसने कहा देखो महाराज एक पहर रात जाएगी तब तक मेरे ये ग्राहक रहेंगे, तब तक मेरे को समय नहीं है, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, जो आप पूछोगे मेरे को जो आएंगे बताऊंगा, अभी मेरे देखो ना कितने ग्राहक खड़े हैं, इनके कहते हुए मैं कैसे आ सकता हूँ। ब्राह्मण देखा क्या बात है, वो ब्राह्मण आ गया सुनो, तो उसने कहा कि महाराज आपको जल्दी हो तो ये सज्जना द्रोह रहते हैं अद्रोह उसके यहाँ चले जाइए, वो आपको बात बताएगा, वो धर्म के तत्व को जानने वाला है, अद्रोह उसका नाम है, सज्जना द्रोह सज्जन उसको पदवी मिली है वो है, उसमें क्या है इसमें क्या है कि महाराज ये व्यापार करता है पर झूठ नहीं बोलता है, पूरा तोलता है और हर एक का हित कैसे हो, कौन सी वस्तु की अभी जगत जरूरत है जगत में और वो वस्तु कहाँ सस्ती से मिलती है, वहां से वो ला करके और सस्ते सस्ते दामों में जिसे अपनी जीविका भी हो जाए पेट पालन भी हो जाए लोगों की सेवा हो जाए, इस दृष्टि से वो व्यापार करता है, लोभ की दृष्टि से नहीं करता है, क्या किस चीज की अभी जनता को जरूरत है, वो चीज कहाँ मिलती है कैसे मिलती है, उसमें चाहे कितने परिश्रम हो पैसा लग जाए कुछ लग जाए पर उस चीज को ला करके ये बिक्री करता है, सबकी आवश्यकता देखता है कि किन किन चीजों की जरूरत है ज्यादा, ऐसे ऐसे विचार करके वो व्यापार करता है और पूरा तोलता है और सच्ची बात कहता है, जो कोई आ जाए दुकानदार दुकान पर उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, भगवत बुद्धि रखता है और इसी में सेवा क्या करूं किस से मेरे से सेवा बन जाए और जगह कोई वस्तु रह करे काम उससे मैं ज्यादा इनकी सेवा कर सकूं, ऐसा भाव रख करके बड़ा आदर भाव से सब काम करता है, इतनी भीड़ खड़ी है महाराज चटाचट सबको दे रहा है चीज अपनी भरी हुई चीजें है, ये दुकानदारी बढ़िया नहीं मानी गई है। रसकस की बिक्री, गुड़ है, तेल है, घी है आदि की बिक्री बढ़िया नहीं मानी गई है। ऊंच दर्जे का व्यापार नहीं माना गया है, परंतु इसका भाव इतना श्रेष्ठ है, उत्तम है, हित करने का। ते प्राप्नुवन्ति मामे वा सर्वभूति ते रता, वो हित के दृष्टि से कर रहे थे, इसमें अनिश्चिति आ गई। सगुण निर्गुण साकार निराकार धर्म अधर्म आदि सबके तत्व को ठीक तरह से जानता है, सब इसको ज्ञान हो गया है। केवल सच्चाई के साथ और दूसरों के हित की दृष्टि से ही व्यापार करता है, अपने लोभ की दृष्टि से नहीं। लोभ है ही नहीं इसी मन में, किस तरह से सबकी सेवा कर जाए, ऐसे ये काम करता है। इस त्याग वृत्ति है, ये त्याग है। दुकानदार हजारों लाखों रुपया को काम करता है, फिर उसे आता है, लग जाता है, मंगाता है, परंतु हृदय में वृत्ति में विषय में त्याग है और सबके हित के भावना इसको रखता है। इस कारण से ये सब कुछ जानता है। अगे यह सृजनाद्रोह, सज्जन अद्रोह का मुकाबला हुआ या बाजार हुआ तो उसकी दुकान गई, वहां उस ठाकुर जी खड़े हो, ब्राह्मण देव था, वो बता दिया घर हो, बता रहे अंदर जा रहे हो गए, उसमें जाते वही वो खड़ा है ब्राह्मण। उसे ब्राह्मण देव था, आपने बताया? नहीं, मैं नहीं बताता हूँ। तो इस अद्रोह में क्या है? अद्रोह ने कहा, महाराज देखो अभी मेरे को समय नहीं है, मेरे उधर जाना है। हमारे महाराज की, राजा जी की कृपा है, इस वास्ते मेरे को प्रजा में देखने के लिए जाना है, समय नहीं है। आप ठहरो, फिर आपको मैं बताऊंगा। और आपको जल्दी हो तो ये विष्णुदास एक रहता है, भगवान का भक्त, भगवान के मंदिर की पूजा करता है, वहां जाओ, वो आपको बता देगा। एक इंसान गाड़ी भेज रहे हैं तो वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। वहां से चले तो पूछा, इसमें क्या बात है कि महाराज इसका नाम सज्जन अद्रोह, द्रोह किसी के साथ नहीं करता, ऐसा सज्जन है ये, तो इसमें क्या बात है? कहते देखो, इसने अपने धर्म का पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है और धर्म का पालन किया है, और इसकी सज्जन पदवी है, सबके साथ बड़ा प्रेम का बर्ताव करता है। तो यहाँ के राजा ने अपने बड़े राजकुमार को कहा कि तुम जाओ हमारे राज्य में सब जगह घूम कर जाओ, किसी गांव में किसी बात की कमी हो वो सब नोट कर लाओ और उनकी पूर्ति करेंगे, फिर तुम इस यात्रा में जाओ। तो राजकुमार क्या ठीक है, बहुत अच्छा आज्ञा लेकर गया। तो अपनी कुमारानी थी स्त्री, वो बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी श्रेष्ठ थी, उसको लेकर वो आया अद्रोह के पास में कि मैं तीर्थ यात्रा में, क्या लोक यात्रा में जा रहा हूँ प्रजा की सेवा के लिए, मेरी स्त्री है, इसको आप रखिए अपने पास में। तो उस अद्रोह को बोला कि देखो स्त्री है, दो कुल में रह सकती है, अपने बाप के कुल में, ससुर के कुल में, दो में रह सकती है, तीसरी जगह नहीं। ना तो मैं आपका कुटुम्बी हूँ, ना मैं आप स्त्री का कुटुम्बी हूँ, मेरे पास में आप कैसे रखते हैं? कहते ये कोई आप की बात नहीं है, मेरा जितना विश्वास आप पर है इतना ना तो मेरे परिवार को मेरा विश्वास है, ना इस स्त्री के परिवार का भी मेरे को विश्वास है, मेरे को विश्वास आपका है, आप अपने पास रखो और मैं पीछे आ जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, तो अभी आप अपने पास रखो। तो आनाकानी करीब ने उसने राजपूत कहा ये तो यही रहेगी। तब वो बोला देखो ये आपकी कुंवरानी है, ये भी समझ लो कि मैं जैसे रखूंगा वैसे रहना होगा, मेरे साथ में सोना होगा, मैं जैसे रखूंगा वैसे रहना होगा। फिर आप कहो क्या हुआ कैसे नहीं है, तो वो इसने स्त्री की तरफ देखा, स्त्री तरफ देखी, स्त्री बोली मेरे को क्या पता, मेरे को तो आप आज्ञा दो वो पालन करना है, मैं कोई सम्मति थोड़ी देती हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मेरी इच्छा है कि इनके अनुसार को ये कह जैसे ही रहो वैसे ही सोना करना सब, इसकी आज्ञा के अनुसार सब काम करो, तो जो आज्ञा आपको करूंगी, ऐसे कहकर वो चला गया। तो वो तो चला गया, उसी घर में वही ब्राह्मण खड़ा है, फिर वो ब्राह्मण साथ में हो गया कि वो विष्णु भगत है, उसको मैं नाम बताऊं साल बाद। तो फिर वो महाराज ऐसा बड़ा पत्नी व्रत और ऐसी श्रेष्ठता उस स्त्री को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पास आज कहा कि देखो तुम और पड़े को रखो, इसको अपनी पुत्री है पैदा हुई इस तरह से रखो, इसका पति गया है बाहर तो इसे कोई चिंता न हो, वो पति का चिंतन करते ये व्याकुल न हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ और अपने पास में रखो और इनका चित्त प्रसन्न रखो, ये सेवा करो। तो दिन भर तो तुम करो, रात्रि मैं आ ही लेता हूँ, मेरा बताओ बताऊंगा तुम्हें तो, अब सेवा करो। ऐसे वो पति व्रता ऐसी वो अद्भुत कृष्ण वो सेवा करती, आज्ञा पालन करती और ठीक तरह से उस लड़की की तरह अपनी प्यारी पुत्री की तरह प्यार से रखती, सेवा करती। उस कन्या को भी उस राज महारानी वो कुंवराणी को भी ये मालूम हुआ मैंने अपने बाप के घर में हूँ मैं, ऐसा उनको मालूम होता। वो इसलिए से प्यार से लाड से बड़े आदर से उसका पालन करता था। रात्रि होती तब कह देखो मैं ये अब शहर के लोगों का मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इस वास्ते उनको मैं अलग नहीं सुनाऊंगा, अलग नहीं रखूंगा रात्रि में। एक तरफ अपनी स्त्री को सुनाता, एक तरफ उस कुंवराणी, बीच में आप सोता, वो सोता उस समय मालूम होता उसको वहां साफ लेख लिखा है कि वो कुंवराणी का हाथ लग जाए पैर लग जाए तो मालूम होता मन माँ है, मेरी माँ की गोदी में सोता हूँ, बच्चा जैसे माँ की गोदी में रहता हो इस दिन उस कुंवराणी की गोदी में रहता, इस दिन सोता इस अपने स्त्री मालूम देती, इस दिन माँ की तरह मालूम देती, बीच में सोता। छह महीना लग गया उसको, छह महीने मैंने घूम का आकर पीछा आया, आया तो भारी की बड़ी अच्छी बात, तो आया तो लोग इकट्ठे हो गए बहुत से और कहा कि देखो निंदा करने लगे, देखो अकल निकली इसकी, कुंवर की भी जो कि अपनी स्त्री को सौंप गया, साथ में सोता है ये कोई ऐसा आदमी है, ऐसे के लोगों में निंदा होगी, बड़ा अवशेष हुआ। तो अजरोग ने कहा भाई ये तो बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें, अब विचार करना, विचार करता था और अंत में विचार किया कि अपने अग्नि लगा काठ लगा कर काठ में जल जाना, अपने जो ऐसी अपने से बात सुननी पड़ती है, जिसकी शोभा जगत में जिसका जीवित धन जीवित ही मृतक दशा सुने कुशोभा करना, अपने कानों से कुशोभा सुन तो मृत मरने के समान है, संभावित चाकृत्य मरना दृश्य दे, ऐसा विचार कर वो चिता बढ़ा करके उसने जलने की तैयारी। इतने वो कुंवर आया कि क्या कर रहे हो, कि भैया देखो तुम्हारी बात मांगने के लिए, केवल तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए मैंने ये कलंक ले गया, इतना मेरे पर कलंक आ गया, लोग इसे निंदा करते हैं तो मैंने विचार किया कि अपने शरीर को छोड़ देना है, अच्छा नहीं है, जो शरीर जिसकी जिंदा होती है अपदेश होता है उसको मैं क्यों धारण करूं। राजकुमार कहता है कि दुनिया कुछ भी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मेरे मन में कोई भाव नहीं है, आप ऐसा क्यों करते, नहीं ऐसे करो ऐसे करो, अग्नि जला दी, भीतर में बैठ गया, अग्निदेव खुद प्रकट होकर के उसको कहा ये सर्वथा निर्दोष है शुद्ध है, इसके मन में भी कोई दुर्भाव आया नहीं है, इस बात से निर्मल है। अग्नि लगाई उस समय में लोग थे बहुत निंदा करने वाले, वे भी देखे तमाशा देखो क्या होता है, मर जाता है जाता है कैसा होता है, तो लोग बहुत से इकट्ठे हो गए थे वो देखने के लिए, तो वो आग में बैठ गया, वो तो साफ हो गया, उनकी निंदा करने वालों के मुंह पर कोड़ निकली आई, खराब हो गया मुंह सबका, निर्दोष को दोष दिया तो निर्दोष दोष देने का बड़ा पाप लगता है, ऐसी बात हुई। पर ये इतना पक्का है इतना सच्चा है किसी मन में कोई विकार आता ही नहीं, ऐसा शेष है, उसी तप के प्रभाव से ये सब जानता है। वो सबने वो बात कह दी सर, बगली बुगली मर गई, रुआत धोती गिर गई, सब जान देंगे, सब वो एक एक बात कह रहे कि सबके सभी जानने वाले हैं, ये ऐसे ये बना मंदिर है, इसमें पूजन पूजन करता है विष्णुदास। उस विष्णुदास ने देखा तो कृष्णदास आओ महाराज आओ कृपा करो महाराज, आप धर्म का तत्व तो जानने के लिए आए हैं, आपको अजद्रोह सज्जन ने भेजा है यहाँ, तो मैं धर्म का तत्व मैं क्या जानू। धर्म का तत्व तो भगवान जानते हैं, जैसा भगवान जानते हैं ऐसा वो अपरमात्म राम समझान जथा, राम जी के समान कोई यथार्थ जानता नहीं। भाई बता सकते हैं महाराज, तो चलो आप मंदिर में चलो ठाकुर जी के सामने। तो मंदिर खोला तो मंदिर में ठाकुर जी के जगह वही ब्राह्मण खड़ा है जो वहां खड़ा था, वही वहां खड़ा है, उसे दर्शन किए। तो कैसे क्या बात है महाराज, आप साक्षात रूप से। हाँ, वो माँ बाप की सेवा करता है इस कारण से उसके बस में हूँ, वो सुभा पतिव्रता है इस कारण से मैं उसके बस में हूँ, और वो तुलाधर है अपने सच्चाई से व्यापार करता है सबका हित करता है उस बस में हूँ, अद्रोग ऐसा जितेंद्रिय और इतना अच्छा श्रेष्ठ है इस वर्ष में उस बस में हूँ, और ये विष्णुदास है मेरी भक्ति करता रात दिन भजन करता है मेरी सेवा पूजा में रात दिन ही लगा रहता, केवल भजन स्मरण के सिवाय मेरी सेवा के सिवाय कुछ काम ही नहीं करता है, हर दिन ऐसा रहता है, इस वास्ते मैं इसके यहाँ पर रहता हूँ साक्षात। अब देख बताऊ मैं रोता हूँ, वो देखो मुख से अंदाज है उसके माँ बाप मर गए, वो मर गया देखो मेरी दृष्टि देखो वो मर गया है, और उसके वो विमान आया है भगवान का, और विमान में चल के वो जा रहा है, माता पिता के साथ वो भी जा रहा है, अरे घर में रह रहे चिड़चिटा है चींटी है ये छोटे छोटे जंतु है वे भी चतुर्भुजी मूर्ति होकर के वो जा रहे हैं। देखो देखो इसकी विशेष प्रभाव देखो, भगवान ने देखा है नरोत्तम ने देखा, नरोत्तम ने समझे तेरे मन में अभिमान आया कि मैं धोती मेरी सूखती है और वो बगुली मर गई है एकदम ही, किससे तेरे विलक्षण करता है, ये कितने कितने विलक्षण पुरुष है, इनमें अभिमान है ही नहीं, बड़ी नम्रता से बड़ी सरलता से विष्णुदास भी महाराज की सेवा पूजा करता है और कहता है बड़ी आपने कृपा करी दर्शन दिए। इसका हुआ सिद्ध, सिद्ध हुआ स्वेष्वे कर्मणि अभिरता सं सिद्ध लभते नरः, अपना अपना काम, अब पतिव्रता काम हो तो पतिव्रता ही काम है, माँ बाप की सेवा करने पुत्र का काम है, ऐसे थोड़ा सा व्यापार करता है, व्यापार के द्वारा भी सबकी आशा कैसे करूं, सबकी सेवा कैसे बनूं, इस पवित्र भाव से सबका हित करने के लिए व्यापार करता है, स्वार्थ का त्याग करके झूठ कपट बेईमानी का त्याग करके और बड़ी सच्चाई के साथ सबकी हित दृष्टि से व्यापार करता है, उस व्यापार में भी ये विचारता आ जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा पर है। ये हमने साधु एक पुस्तक लिखी गीता लिखाते थे तीसरा अध्याय का प्रकरण चला तो उस दिन मेरी ये मन में आई, वर्षों से मैं व्याख्यान देता हूँ 70 वर्षों से ऊपर हो गए, कुछ कम गया होगा याद नहीं पूरा, तो इतना वर्षों देता हूँ व्याख्यान, उसे ज्ञान नहीं हुआ गीता की टीका दिखाने लगी तो कई बातों का ज्ञान हुआ, उसमें ऐसा महाराज भान हुआ तीसरे अध्याय में कि भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य कुछ करना ही नहीं चाहिए, जब पर ध्यान कीर्तन कोई करने की जरूरत नहीं, केवल अपने जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है जहाँ जो जिम्मेवारी है उसका ठीक सांगोपांग से पालन करे तो मुंह बुद्ध ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, यहाँ घर का काम ठीक होता है तत्व की प्राप्ति परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता एक पूजन श्रेय परम भावश्यसे परम कल्याण की प्राप्ति कर ले, क्योंकि अपने कर्म से भगवान का पूजन होता है अश्वकर्मणा, तो वो अपने धर्म के ऊपर इतना मर्यादा पर रहता है उसका कल्याण तो मुफ्त हो जाता है, सज्जनों कल्याण वो करना नहीं पड़ता है, परमात्म तत्व को निर्माण नहीं करना है उसको बढ़ाना नहीं है, परलोक में अपनी मुक्ति बनाना नहीं है, वो तो है जो कि तू है, योग्य बन जाएगा मिल जाएगी वो चीज, अयोग्य होने के कारण से उनको अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं तो परमात्मा घटघट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर, कपट तल्स से भरत सन्मुख हो जरूर, सबके सन्मुख हो जाए भगवान, बहन हो भाई हो छोटा हो बड़ा हो रोगी हो निरोग हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो पढ़ा लिखा हो चाहे अपन हो कैसा ही हो भगवान ये सबका अधिकार है, देखो अलग अलग चीजों में अलग अधिकार होता है, सबको धन बरोबर नहीं मिलता, सबको मान बरोबर नहीं मिलता, सबको निरोगता बरोबर नहीं मिलती, संसार में यश सबको बरोबर नहीं मिलता, संसार की चीजों में विषमता रहेगी, सबके पास में धन एक सा नहीं है, बुद्धि एक सी नहीं है, विचार एक सा नहीं है, विवेक एक सा नहीं है, ये नहीं है, परंतु परमात्मा एक है सबके पास, सबके भीतर में परमात्मा एक है, उनमें विषमता नहीं है, उसमें पक्षपात नहीं है, किसी में कम और किसी ज्यादा ऐसी नहीं है। संसार है विषम रूप है, ये प्रकृति विषम रूप है, तो विषम रूप से संसार होगा, परंतु परमात्मा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, सब जगह हूँ, सब पर मोरी दया, भगवान कहते हैं रामायण में के सबके ऊपर, सब मम जी मैं मम उपजाए, सब मेरा उपजाया हुआ है, सब पर मेरी दया बरोबर है, मेरी तरफ से दया की कमी किसी में नहीं रखी है, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया है, सर्वभूत अब से सुदुराचारो पापी से पापी भी मेरे भजन में लग जाए तो मैं पापी से देखता ही नहीं। रामायण में आता है रहस्य ने प्रभु से तो चूक किए की चूक करता है तो भगवान को याद नहीं रहती, कर्म स्रोत सौवार उसके हृदय का जो भाव है, उसका जो मर्यादा के ऊपर चलने का दृढ़ विश्वास है, दृढ़ता है, उसका भाव है, उस भाव को देखता हूँ। रहते न प्रभु से तो चूक किया कि कर्म स्रोत सौवार ये की हृदय की बात है, उसको भगवान सौवार याद करते तेरे कि सौवार क्यों करते हैं, कि जिसके भूलने का स्वभाव ज्यादा है, कंठ सोचा नहीं, वो एक श्लोक लेकर के एक माला लेकर और बिना पुस्तक कंठ सो, वो श्लोक कंठ सो जाएगा। मूर्ख से मूर्ख झट बुद्धि वाला भी सौ बार याद करने से याद हो जाता है, तो रघुनाथ जी मतलब भगवान समझते हैं कि मैं कहीं भूल जा जाऊं, इसका ऐसा उत्तम भाव है और मैं भूल जाऊंगा तो ठीक नहीं, तो उसको याद कर तो शुद्ध सौ बार ही की हृदय की बात को सौ बार याद करते हैं, अरे भूल नहीं जाऊं कहीं, इतना भगवान के वहां उसका आदर है। केवल क्या बात है कि अपने कर्मों से भगवान का पूजन करता है, जहां कहीं रहता है सिवाय भगवान की उसको कोई और संबंध ही नहीं है, और वो सब सेवा करता है सबका, तो भगवान को तो याद करता है, भजन करता है, संसार की सेवा करता है, केवल सेवा से ये बात हो जाए, उसी को कर्मयोग कहा है गीता ने, ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी अभिगम्य थे, योग के द्वारा उसी की प्राप्ति होती है, तो जो क्या समतम योग उचते, हृदय में समता है, यह दस सर्वो ये शान साम्य माना, जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है, यही सरगा जीता, यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार पर विजय उन्होंने कर ली, सब पर विजय जीत गए वो, उनके सामने संसार हार गया, नहीं तो संसार के सामने हार जाते हैं, किसी कुछ गर्ज करे, किसी कुछ गर्ज गई, उससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, तो वे सब के सब हारे हुए होते हैं, पर जिसके समता मन में है, सबके हित की बात है, तो यही होते सर्ग, वो संसार को जीत गए, अब संसार उस पर विजय नहीं कर सकता, ये भी ऐसा कर्म है जिसके अनुसार जन्म हो जाए, ये किसी की ताकत नहीं है, उसने संसार को जीत लिया, यही तेज सर्ग, ऐसे अपने कर्मों से उनका पूजन करे, तो माता बहनों की बात सुनी, पद सुना, तो उनमें बात क्या थी, ऐसी ऐसी बड़ी भारी महिलाएं हो गई है महाराज, भक्ति में देखू तो मीराबाई जैसी होगी, पति बने सीता है, सावित्री है, द्रौपदी है, तारा है, कुंती माता है, कितना विलक्षण उन्हें प्रभाव, कितनी सच्चाई, कितने नेक नियत बना, कितनी अलौकिक आश्चर्य जैसी बात है, आश्चर्य जैसी कुंती माता का कितना विचित्र भाव, पांडव वनवास में चले गए, द्रौपदी भी चली गई, बेटा बहु सब जनवास वनवास में रह गए, कुंती माता वहां घर पड़ रही, तो विदुर जी ने सेवा करी, देवर लगते थे ये, माँ की तरह उसे आदर किया, सत्कार लगा, सेवा करी, गांधारी जेठानी खास पंडू की स्त्री, वो धृतराष्ट्र की स्त्री, पर उसकी ऐसी मन में नहीं आई कि भाई मेरी देवरानी कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे करती है, उसके बेटा घर पर नहीं है, अकेली है, विधवा है, उसे आई नहीं रहती बात में। परंतु ये तो महाराज से सेवा करती है। जब सब हो चुका और राजा महाराज युधिष्ठिर हो गए, राजा अब प्रजा का पालन करते हैं, ऐसे समय में विदुर जी ने जा करके धृतराष्ट्र को कहा, अरे धृतराष्ट्र तुम्हें शर्म नहीं आती, भीमसेन ने 100 बेटा मार दिया तुम्हारा और उसी का अन्न खाते हो, तुम भजन में नहीं लगते हो, ऐसी बातें सुनाई, अब तुम सब छोड़ करके वृद्धावस्था में राजा लोग भजन सुमन लिया गए तपस्या करते हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए, ऐसी कुछ बातें कही। तो कहा देखो मेरी एक मन में है बात, अब चलेगा मुनाफिक, एक बात मेरे मन में है, क्या है कि मेरे जितने पुत्र चले गए, बड़े चले गए, जितने विष्णु जी आदि जितने बड़े बड़े थे वे भी चले गए, छोटे चले गए, समान चले गए, विस्तृत लोग चले गए, तो मेरे मन में आ गया मैं श्राद्ध करूं, मैं तर्पण करूं, मैं पंडित हूं, उनकी तृप्ति करूं, जो मर गए उनके लिए पैसे श्राद्ध करूं, मैं खुला खर्च करूं, ऐसी मेरे मन में बात, वो करके मैं जाऊंगा। तो पहुंचे जिष्णु महाराज के पास कि महाराज ये बात धृतराष्ट्र ने कही है कि मैं सब खर्च करूं, मैं इसलिए खुला खर्च करूं। भीमसेन बोला गया तेरे बाप का तेरे बेटे का राज नहीं है, अभी सब खुला नहीं, कितना होगा कितना खर्च करेगा, चुप रहा चुप कर दिया, तुम जाकर कह दो ये मेरे पिता है, बड़े पिता है, बड़ा बाप है, ये ताऊ है, मेरे पिता है, वो चाहे जितना खर्च करो, राज्य उनका ही है, मैं तो एक बैठा हूँ ऊपर, राज्य मेरा नहीं, राज्य तो उनका ही, ताऊ जी का ही है, आप जितना खर्च करो, जैसा खर्च करो, जो चाहो सो आप करो, सब चीज दान पुण्य करो, तो राज्य का जो खजाना है सब आपका खजाना है, और मेरा खजाना, मेरी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, महल है, मेरी व्यक्तिगत चीज है, वो भी आपकी सेवा में है, और अर्जुन की भी चीज व्यक्तिगत अपनी संपत्ति है, महल आदि अपना चीज है व्यक्तिगत, वो भी आपके अधीन है, नकुल सहदेव का भी, भीमसेन के लिए नहीं बोले पहले ही कहता है, और मैं वो कह दिया, मुझे पूछे कह दिया, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति महल आदि है, उसमें जो आप वो चाहे जिसको चाहे दे सकते हो, सभी देने का आपको खुला है। बात कह दी सर, ऐसा कहीं महाराज ने कहा है, आप मर्जी जितना करो, तो खर्चा किया खूब, पहाड़ लगा दिए चावलों के, भात बना के सीजन पहाड़ लगा दिए, सबको भोजन खाया इसी तरह से, और प्रजा को इकट्ठा करके और धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मेरे पुत्र ने आपके साथ जो बर्ताव कोई खराब किया है, तो मैं माफी मांगता हूँ, आप सब माफ कर दो। प्रजा बोले कि महाराज ये आपके आपस में लड़ाई बात अलग ही, पर हमारे साथ में तो जैसा दुष्टन ने बर्ताव किया ऐसा ही दुर्योधन ने बर्ताव किया। वरम विरोध हो भी सम महात्मा भी, भारवी कवि किरातार्जुन में लिखते हैं कि दुर्योधन ने विचार किया कि युधिष्ठिर को प्रजा क्यों चाहती है, उसमें क्या क्या विलक्षण बातें हैं, तो वो उसने याद कर ली, याद करके वैसे ही अपने गुण भर दिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज प्रजा के साथ बर्ताव करते हैं, ऐसे ही बर्ताव दुर्योधन ने शुरू कर दिया कि बस जिसने युधिष्ठिर से राजी है तो मेरे को राजी क्यों नहीं है, वनवास में गए जो तो हजारों लाखों ब्राह्मण उनके साथ चले गए, राज जमाती महाराज दुर्योधन को चाहने लग गए सब ही, तो वहां पर प्रजा ने कहा है धृतराष्ट्र से कि हमारे साथ बर्ताव बड़ा अच्छा किया दुर्योधन ने, बहुत अच्छा बर्ताव किया है, आप कोई तरह का विचार मत करो, आप प्रसन्न रहो, सब ठीक रहो, ऐसी बातें हुई, ऐसे बातें करके फिर कहते मैं वनवास में जाऊंगा, भजन करूंगा। महाराज पगाम पड़ गया कि महाराज कह करते हो मेरा, मैं रोजाना नमस्कार किसको करूंगा, अरे किसे कोई बात कहूंगा, मेरे तो पिता आप और आप तो चले जाते हो, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा, कि नहीं मैं वनवास जाऊंगा, मैं वनवास में जाऊंगा, ऐसे विचार तैयार हो गए। उस समय कुंती माता ने कहा कि मैं जाऊंगी साथ में, मेरे ससुर के समान है, मेरे जेठ जेठानी है, सास और ससुर के समान है, इनकी सेवा मैं स्वयं करूंगी। तो धृतराष्ट्र की लाठी तो पकड़ी विदुर जी ने और गांधर की लाठी पकड़ी कुंती माता ने। नकुल सहदेव भीम अर्जुन ये कहते माँ हम तुम्हारे साथ में चले ना बेटा मैं नहीं ले जाऊंगी साथ में, मैं तो अकेले मेरे सास ससुर की सेवा करूंगा, मेरे सास ससुर की तरह ये पूजनीय आदरणीय मेरे जेठ जेठानी है। ऐसे राजमाता है कुंती, अब समझे अब राजमाता है, सब कुछ राज की मालिक है, बेटा धर्मो बिगड़ जैसे युधिष्ठिर जी के नाम लेने से धर्म बढ़ता है वो बेटा राज कर रहा है। ऐसे समय महाराज त्याग मूर्ति कुंती जा रही है पैदल जंगल, ना बेटा सवारी वाली कैसे जाओ, वनवास में जा रहे हैं, ऐसे जा रही है वहां महाराज काम करती है, जल भरती है, कंदमूल फल लाती है, कुटिया बना देती है रहने के लिए सब काम। वृद्ध शरीर हो गया, कुंती माता बूढ़ी हो गई, शक्ति कम रह गई है, परंतु सेवा आप जेठ जेठानी की स्त्री करती है उत्साह से तत्परता से। जिस जेठ जेठानी ने ये बेटा पता नहीं लगा वैसे ख्याल नहीं किया कि इनके बेटा चले गए वनवास में तो ख्याल करो, वह जेठानी है उस जेठानी की सेवा स्त्री से करती है। धृतराष्ट्र तो अंत थे पट्टी बांध ली लाठी पकड़ के ले जाती पानी भर कर लाती, ऋषि मुनि देखते जंगल में रहने वाले तपस्वी ये कौन है ये कौन आ जाए ऋषि की माँ है, माँ है, लोग बड़ी आदर दृष्टि से देखते पूजनीय दृष्टि से देखते, देखो राजा माता है ये आज तो दुनिया की माँ है ये पराज ऋषि राजा है तो ये राजमाता है। और इसमें कितनी विलक्षण बात उसकी, कैसा अच्छा भाव उसका, कितना ऊंचा बर्ताव, सब राजस्व कार्य छोड़ करके और उनके शरण में जा रही है और वो सेवा करती है वहां पर आश्चर्य आता है। एक और घटना आज याद, युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि भाई अपने माता जी से और ताऊ जी से मिलूं, तो कह दिया भाई हम वनवास में रहते हैं वहाँ हम दर्शन के लिए जाएंगे। प्रजा ने सुना मरा हजारों लाखों आदमी इकट्ठे हो गए, सबके सबके भी हम जाएंगे, तो बाहर भेजा करके उन्होंने स्थान अपना बना लिया, ठहर गए महाराजा। तो प्रजा बहुत सी इकट्ठी हो गई साथ जाने में, तो वनवास में जहाँ रहते थे धृतराष्ट्र कुंती विदुर जी ये रहते थे वह गए वहाँ महाराज मिलने को गए है, तो दृश्य का वर्णन वहाँ बड़ा सुंदर आया है। युधिष्ठिर महाराज है, भीमसेन है, अर्जुन है, ये तो बैठे हैं अगाड़ी, और नकुल और सहदेव माता कुंती की गोदी में बैठे हैं। एक तरफ वो है नकुल सहदेव, माद्री ने कह दिया था ना पालन तुम्हारे करना होगा, तो जितना स्नेह माद्री करता उसे ज्यादा और भीमसेन अर्जुन से भी ज्यादा स्नेह नकुल सहदेव पर रखती थी माता कुंती प्यार से। तो लोगों ने वहां परिचय दिया कौन सा है, वो जो मोटा शरीर है यह भुजदंड है ऐसा, वो तो भीमसेन है, और जो लंबी लंबी अंगुलियां है जिसकी पिंडी भी लंबी है और श्याम शरीर है वो अर्जुन है, और वो नकुल सहदेव बताए वो बैठे दो, वे तो माँ की गोदी में बैठ गए माँ के ऊपर हाथ है वो नकुल सहदेव है, इसने वहां प्रजा को बताया है। तो लोगों को पता लगा तुम्हारे कितना स्नेह है, वहां से पीछे लौटने लगे तो नकुल सहदेव ने कहा हम रहे भीमसेन ने कहा मैं रह जाऊं अर्जुन ने कहा, फिर सहदेव ने कहा माँ मैं तो आपके पास रहूंगा आपकी सेवा में, वृद्धावन सर आप काम करती हूँ मैं आपकी सेवा में रहूंगा, मैं तो सेवा करूंगा ना, कहा बहुत सी बात मानी नहीं, तब कहा देख बेटा तू रहेगा तो मेरी तपस्या में बाधा आ जाएगी, तेरे पर चीज है माँ का जी है लड़का याद आ जाएगा तो तू काम करेगा तेरे मेरे मुंह हो जाएगा मेरे बाधा लगेगी। अब इसका जवाब नहीं आपके बाधा लगे थोड़ी सी मैं तो सेवा के लिए आता हूँ, तो रस तो चले गए। कितनी विलक्षण उनकी बातें, माता कुंती का कितना विचित्र त्याग है, आश्चर्य बात है। तो हमारे भारत की ऐसी ऐसी माताएं वही विलक्षण जिससे आज ये देश विकसित है। ये देश में पतिव्रता और स्त्री की यही देश है आज। अब आज उसमें लोग कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे स्त्रियां होगी, राम 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 राम। ये लड़कियां आजकल पढ़ पढ़ क्या होगी, अब क्या करेगी पता नहीं है। देश का महान पतन है, हम करें क्या, किसको कहे, तो सुनते ही नहीं, तो बिचारे नहीं। नारायण 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 नारायण।
तुम्हारी तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा हमारी। हाँ रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे तुमने गोद खिलाए थे, रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे तुमने गोद खिलाए थे। भीष्म अर्जुन भीम सेन से तुमने जो धा जाए थे, भीष्म अर्जुन भीम सेन से जी पीर मदार पूज कर, अब तुम पीर मदार पूज कर, अब तुम पैदा किए मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। पीर मदार पूज कर, अब तुम पैदा किए मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, सीता द्रौपदी दमयंती ने कैसा पतिव्रत धारा था। सीता द्रौपदी सीता द्रौपदी दमयंती ने कैसा पतिव्रत धारा था। सीता द्रौपदी सही हजारों कष्ट ये लेकिन धर्म से पग नहीं टारा था। सही हजारों कष्ट ये लेकिन धर्म से पग नहीं, पति सेवा के बदले में अब देत हजारों गारी। पति सेवा के बदले में अब देत हजारों गारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थी। राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दानी थी। अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दानी थी। जल कर गई पति के संग में, जल कर गई पति के संग में, ऐसा पति व्रत धारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना। इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना। विद्या पढ़ो पति व्रत धारो, ये ही है उत्तम गहना। विद्या पढ़ो पति व्रत धारो, ये ही है उत्तम गहना। बिन विद्या के हाय तुम्हें अब कहते नार गंवारी। बिन विद्या के हाय तुम्हें अब कहते नार गंवारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, तुम सुनियो भारत नारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई।